ये है 1964 की साकार वर्ण रिकॉर्ड चलाए, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। अभी गिरते ही रहेंगे अंत तक,
संभलना ही संभलना,
संभलना ही संभलना है, कुछ तो कहना पड़ता है। उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है, आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। मिलते जुलते हैं तो दुआ सलाम तो करते हैं, मतलब कुछ तो कहना पड़ेगा। तो ओम शांति कहना अच्छा है ताकि हम एक दूसरे को क्या याद दिला सके कि हम सब शांत स्वरूप आत्मा हैं। पहली आवश्यकता ये है सारे संसार की, क्या कि हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई शांत स्वरूप आत्मा हैं। ये हमारा स्वधर्म है। आत्मा का पहला धर्म क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप। बाप भी कहते हैं हम शांत हैं, कौन से बाप कहते हैं, साकार या सदाशिव? सदाशिव कहते हैं हम शांत हैं, लेकिन वो तो नीचे आया हुआ है, वो भी क्या कहता है, हम शांत हैं, शांत देश के रहने वाले हैं। तो क्या हम आत्माएं शांत देश की रहने वाली नहीं है? हम आत्माएं भी शांत देश की रहने वाली है, लेकिन वो स्थिति बनाने की बात है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, लेकिन हम अशांत अशांत न हो। तो कहेंगे कि हम कहाँ के वासी हैं? शांति धाम के वासी। तुम आत्माएं अशांत आत्माएं हो, हम शांत देश के रहने वाले हैं। तुम्हारा स्वधर्म शांत है, सारी दुनिया शांति शांति कहती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है यह कोई नहीं समझते। किसको कहा जाता है, है? हाँ, शांत माना कुछ भी होता रहे, हमारी स्थिति अशांत न होने पाए। देहबान होगा तो अशांति होगी, जब अपने को डिटैच कर लिया कि हम तो इस पार्थिव शरीर से अलग आत्मा है, तो शांति स्थिति हो सकती है। समझते हैं कि ये लड़ना झगड़ना जो चलता है वो शांत हो जाए तब हम शांत हों, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा बढ़ता रहेगा या कम होगा? ये तो बढ़ता ही रहेगा। फिर क्या करना है, दुनिया में तो लड़ाई झगड़ा शांति बढ़ती रहेगी, लेकिन हम अपने को संयत कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं आत्मा समझ के। परंतु वो शांति तो कोई काम की नहीं, जिसमें सन्यासियों मिसल जंगल में चले जाएं और हम अपन को समझ लें कि हम शांत स्वरूप आत्मा है। असली परीक्षा कब होगी आत्मा की, जब अशांत स्थिति हो, अशांत वातावरण हो, और उस अशांत वातावरण में भी हम शांत होकर के दिखाएं। पुराने पुराने भी ज्ञान में चलने वाले बैठे हुए हैं और चल रहे हैं ज्ञान में, और नए नए भी चल निकल रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पुराने ज्ञान में चल रहे हैं वो उस स्टेज को पकड़े हुए होंगे और जो नए निकले हुए हैं वो नहीं पकड़ सकते। ये तो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। जिसने पूर्व जन्मों में ज्यादा दूसरों को अशांत किया होगा और खुद भी धमाल मचाया होगा, अशांत रहा होगा, तो ज्ञान में आने के बाद जल्दी शांति की स्टेज को नहीं पकड़ सकेगा, भले कितने भी साल से चल रहा हो ज्ञान में। तो समझते हैं कि ये लड़ना झगड़ना जो चलता है वो शांत हो जाए, परंतु शांत वातावरण में शांति समझना, शांत रहना, ये शांति कोई काम की नहीं। घर में स्त्री पुरुष होते हैं, कोई तो झगड़ते हैं, कोई नहीं झगड़ते हैं, तो वो शांति हुई कैसी शांति? वो नेचुरल शांति हुई क्या? शांति और चीज है। शांति आत्मा का स्वधर्म है, माना? आत्मा अगर अशांत होती है तो अपने धर्म से, अपनी धारणा से नीचे गिर गई। किस आधार पर? कोई न कोई संग का, रंग का आधार बनाया हुआ है, तो संग का रंग लग जाता है, वातावरण से, व्यक्ति से प्रभावित हो जाती है। बाप का भी स्वधर्म शांत है। आत्मा का बाप कौन है? जिसका स्वधर्म सदा शांत है, परम पिता परमात्मा। सिर्फ परमात्मा भी नहीं, क्या कहा? उससे पहले टाइटल लगा है परम पिता, जिसका कोई पिता होता ही नहीं। ऐसा कौन है जिसका कोई पिता ही होता नहीं? सुप्रीम सोल शिव, जो आत्माओं का बाप है, उसका कोई पिता नहीं होता। जब पिता का पिता होता है, है? साकार में पिता होता है, साकार जो जन्म लिया है उस जन्म का पिता हो सकता है, लेकिन आत्मा का पिता उसका भी होता है। ऐसे नहीं कि वो परम पिता है, प्रजापिता का भी कोई पिता है आत्मिक रूप में। तो परम पिता परमात्मा, उनका धर्म क्या है? उनका भी धर्म है शांत। परम पिता परमात्मा शांत देश में रहने वाला है, हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। कोई भी आवे बोलो तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है ना, पहले क्या याद दिलाना? कोई भी नया नया मिलता है तो पहले पहले उसको याद दिलाना है तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है ना, तुम असल वहां के रहने वाले हो। कहां के? शांत देश के रहने वाले हो। यहां आए हो पार्ट बजाने शरीर द्वारा, पार्ट तो बजा नहीं है। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं है। आत्मा को अपना स्वधर्म का पता है। आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो शांत हो जाती है। सभी आत्माएं शांत हो जाती हैं क्या रात को सोने के बाद? है? कोई स्वप्न में उठ के दौड़ने नहीं लगते, चिल्लाने नहीं लगते, रोने नहीं लगते? रोते हैं कि नहीं? रोते हैं तो उनको शांत कहेंगे? उस समय शांत नहीं कहेंगे। डेड साइलेंस जिनकी रहती है स्वप्न अवस्था में भी नहीं आए तो उनको कहेंगे सुसुप्त अवस्था। जिनकी स्वप्न आते हैं, स्वप्न में भी दो स्थिति होती है, एक अच्छा स्वप्न जिसमें आत्मा को खुशी होती है और दूसरा दुःस्वप्न जिससे आत्मा को दुख फील होता है, और तीसरी स्टेज, तीसरी स्टेज भी है। कौन सी?
जिसमें
स्वप्न भी नहीं होता है, डेड साइलेंस जैसी स्थिति भी नहीं होती है, क्या होता है? जोर से घर्राटे मारते हैं, सबको जगाए देंगे। वो है तामसी स्थिति। तो बोला आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो शांत हो जाती है। रात को कितना सन्नाटा रहता है, सुबह होते ही आवाज शुरू हो जाता है, वो ही हद की दिन रात। अभी है बेहद का दिन और बेहद की बात, बेहद की रात। ऐसे अभी बेहद का दिन और रात की बात कैसे है? संगम युग चल रहा है, संगम युग में बेहद की रात और दिन की बात कैसे है? जब निश्चय है तो बेहद का दिन है, ब्रह्मा का दिन हो गया, हम ब्रह्मा की औलाद अपन को समझते हैं, और जब अनिश्चय हो जाता है तो उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ चल पड़ते हैं, तो उसको कहेंगे रात हो गई। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाए थक जाती है, इसलिए कहते हैं वापस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तो किसको याद करो? शांति धाम को याद करो और सुख धाम को याद करो, और बाप को याद न करे तो तीन को याद करे, या सुख धाम को याद करे, या शांति धाम को याद करे, या दो को याद करे, या एक को याद करे। याद कर फिर तीन को याद करे, ये क्या बात हुई?
तीनों में
समाया, एक में तीनों समाये हुए,
तीनों में
सुख धाम में बाप समाया हुआ है, फिर
सुख धाम।
हाँ, पहले तो हमारी स्टेज बने शांत अवस्था की। शांति का अगर हमने अनुभव न किया और हमारे नजदीक आने वाली आत्माओं ने शांति का अनुभव न किया, हमने निसंकल्पी स्टेज का अनुभव न किया और हमारे वाइब्रेशन के अंदर जो भी आत्माएं आए उन्होंने भी निसंकल्पी स्टेज का अनुभव न किया, तो हमारी संपन्न स्टेज नहीं बन सकती। तो पहली प्राथमिकता है कौन सी प्राप्ति की? कि हम शांत अपने को अनुभव करें। इसलिए कहते हैं वापस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। सुख धाम में बैठ थोड़े ही याद किया जाता है, क्या याद कहाँ करना है? शांति धाम में भी बैठ के याद नहीं किया जाता, वो भी संपूर्ण शांति नहीं है कि शांत जगह में बैठ गए फिर याद कर लिया। और सुखधाम में बैठ करके कोई याद करे वो तो वहाँ होता ही नहीं। सुखधाम में किसी को याद करने की दरकार होती नहीं। क्यों? नियम क्या बना है? दुख में सुमिरन सब करे, स्मरण दुख में आता है और सुख में कोई याद नहीं करता। तो याद किया जाता है दुखधाम अशांति धाम में। तो अब बाप कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा हुआ है, तुमको घर चलना है, फिर तुम्हारे लिए शांति भी है और सुख भी है। अशांत रावण कहलाता है। क्या अशांत? चाहे हम अशांत हैं, चाहे हमारे सामने वाला अशांत है, तो कौन है? रावण। अशांत रावण कहलाता है। बाप कहते हैं बच्चे गिरना है और संभलना है। इस समय की ही बात है। किस समय की? जब तक ये संगम चल रहा है, संगम बना शांत और अशांत का संगम, कलयुग और सतयुग का संगम, दुख और सुख का संगम, फिर जब स्वर्ण में सतयुग में पहुंच जावेंगे, स्वर्णिम युग में पहुंच जावेंगे, संपन्न स्टेज बन जावेगी आत्मा की, तो दो बातों नहीं रहेंगी फिर, गिरना खत्म। फिर क्या होगा? फिर उस स्टेज में रहने की बात अनुभव होगी। अतीन्द्रिय सुख जो गायन है गोप गोपियों से पूछो, वो एक बार अंत समय में आरंभ हो जाएगा तो फिर 2500 वर्ष तक कायम रहेगा। तो बाप कहते हैं बच्चे गिरना है और संभलना है, इस समय की बात है। जितना बाप को याद करेंगे तो माया नहीं गिरावेगी। क्या? इनकी याद जाती होगी तो माया गिरावेगी।
और अतेंद्रिय सुख रुद्रमाला के मंत्र को भी मिलता है ना?
इंद्रियों का सुख लेते रहेंगे तो कैसे मिलेगा? रुद्रमाला के मणकों को तब ही मिलेगा जब इंद्रियों का सुख लेना बंद करें। ऐसा हो सकता है कि इंद्रियों का भी सुख लेते रहे और इंद्रिय सुख भी अनुभव करते रहे? एक ही बात होगी, दोनों हाथों में लड्डू, इसलिए रुद्रमाला पीछे रह जाती है। रुद्रमाला तैयार तो पहले होती है, लेकिन रुद्रमाला के मणकों को फिर विजयमाला में, जिन्होंने विजय पाई है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के ऊपर, उन विजयमाला के मणकों में ऐड किया जाता है। अच्छा तुम बैठो थोड़ी देर। क्या? किनको कहा जाता है? रुद्रमाला के मणकों को। तुम थोड़ी देर बैठो, बाद में तुमको उठाते जाएंगे और फिर ऐड करते जाएंगे।
संपूर्ण स्टेज बनने के बाद,
संपूर्ण स्टेज बनने के बाद, संपूर्ण स्टेज बनने के बाद कहीं ऊपर नीचे होता है? फिर तो अतीन्द्रिय सुखी होगा, इंद्रिय सुख की बात होगी नहीं। तो जितना बाप को याद करेंगे तो माया नहीं गिरावेगी। माया कब तक गिरा रही है? जब तक हम बाप को छोड़ करके कोई दूसरे की विचारी याद में डूबते रहते हैं, तब तक माया गिराती रहेगी। जब हमारी याद अभिविचारी हो जाएगी, एक से प्रीति लग जाएगी, फिर माया गिराना बंद करेगी। तो माया कल्याणकारी हुई या कल्याणकारी हुई? कल्याणकारी है ना, नफरत तो नहीं आती, नफरत नहीं आती। बाबा की याद भूले तो माया कोई न कोई प्रकार से गिरा देगी। संभालने और खड़े होने की बात है, कदम कदम पर संभलना है। क्या जो भी काम हम काम करने के लिए कदम उठाएं, उसमें हमें ध्यान रखना है। क्या करना है? संभलने का ध्यान रखना है। कोई तो ऐसे भी है बूचड़ी, क्या सोचते हैं कि जितना गिरेंगे उतना चढ़ेंगे। कहाँ गिरेंगे? संगम युग में गिरेंगे। अगर संगम युग में गिरते रहेंगे तो फिर उठेंगे कब? तो संभलने और खड़े होने की बात है, कदम कदम पर संभलना है। खुद पंडा है बाबा, क्या कहाँ ले जाने वाला पंडा है? शांति धाम और सुख धाम ले जाने वाला है बाबा के बाप, परम पिता। सुख धाम ले जाने वाला नहीं है, कौन है? बाबा। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मिल को बाबा कहा जाता है। तो पंडा है बाबा, तुम्हारा नाम ही रखा है पांडव। जैसे ब्रह्मा की औलाद एक मात्रा बढ़ गई ब्राह्मण, विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव की औलाद शैव, एक मात्रा बढ़ गई ना बच्चे के अर्थ में। तो ऐसे ही पंडा के बच्चे पांडव, तुम्हारा नाम रखा है पांडव। तो पांडवों का भी काम क्या हुआ? खुद भी यात्रा करें और दूसरों को भी अनुभव कराएं कि शरीर में रहते हुए भी हम कैसे शांत रह सकते हैं और सुख का भी अनुभव कर सकते हैं। तुम पंडों की सेना है क्या? किसकी सेना है? पंडों की सेना है। फिर नाम पांडव रख दिए है, हो तुम पंडे। बाप भी कहते हैं मैं पंडा हूँ, तुम लोगों को वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हूँ। शांति धाम का पंडा एक बनता है, वह उनके बच्चे बनते हैं। एक से तो काम नहीं होगा, क्या अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। कितनी बड़ी सेना है, सभी का रुख है शांति धाम की तरफ। वो है परे से परे धाम, बद्रीनाथ अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं है, वहां जाना तो बहुत सहज है। क्या जो भक्ति मार्ग का बद्रीनाथ है अमरनाथ है वहां जाना बहुत सहज है, लेकिन ज्ञान मार्ग का अमरनाथ क्या है?
निश्चय में
रहना,
निश्चय में रहना,
निश्चय में
रहना।
हाँ, सदा ही निश्चय बुद्धि बन करके रहना। जैसी अमरनाथ बाप की स्टेज है, वैसी स्टेज में हम भी स्थिर हो जाए, सदैव ऊंची स्टेज बनी रहे, कभी नीची स्टेज न हमको अनुभव हो न हमारे संगी साथियों और देखने वालों को अनुभव हो। तो बोला उस अमरनाथ बद्रीनाथ में जाना वो कोई बड़ी बात नहीं, वो दूर नहीं है, वहां जाना बहुत सहज है, लेकिन कठिन कहाँ है? है बाप समान स्टेज बनाना, ये कठिन बात है। कठिन राजयोग है या सहज राजयोग है? तो सहज राजयोग है, लेकिन अंतर कब पड़ता है? जब है? जब एक बाप दूसरा न कोई इस स्टेज से नीचे आ जाते हैं। अब विचारी आदमी विविचारी यदि समय जाती है तो कठिन हो जाता है। अगर अब विविचारी स्टेज बनी रहे तो कैसा रहेगा रास्ता? सहज रास्ता रहेगा। अच्छा बताओ, मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है या बद्रीनाथ अमरनाथ जाना सहज है? मूल वतन जाना सहज है, तो अभी तक पहुंच गए होते। 60 साल क्यों घिसते रहे ना? है कोई ब्राह्मणों की दुनिया में से कोई पहुंचा क्यों? सूक्ष्म वतन मूल वतन वहां पहुंच गया कोई कि पहुंच के वापस आ जाते हैं? सूक्ष्म वतन मूल वतन नजदीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नजदीक है? देखने में तो मूल वतन सूक्ष्म वतन परे से परे है। अमरनाथ पर आज अमरनाथ आदि पर जाना तो झट रेल में बैठ करके पहुंच जाएंगे, परंतु वास्तव में मूल वतन सूक्ष्म वतन में जाना वास्तव में देरी नहीं लगती है। बुद्धि की लाइन क्लियर है तो 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। सेकंड की बात है, बहुत परे से परे भी है और नजदीक से नजदीक भी। ये क्या बात हुई? या तो बहुत दूर होगा या बहुत नजदीक होगा, दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? अगर आत्मिक स्टेज पक्की है, बुद्धि की लाइन क्लियर है तो नजदीक है। बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, बुद्धि इधर उधर देहदारियों में स्थूल बस्तियों में फंस रही है, अटैचमेंट में है, तो बहुत कठिन है, दूर है। तो बहुत परे से परे भी है और नजदीक से नजदीक भी है, टाइम नहीं लगता है। तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो, वो जिस्मानी यात्रा है तो कोई नई बात नहीं है, आधा करती है यात्राएं करते आए हो। ये रूहानी यात्रा तुमको एक ही बाप आकर के कराते हैं। क्या क्या कहा? रूहानी यात्रा एक ही बाप या आकर के कराते हैं और जिस्मानी यात्राएं अनेक देहदारी गुरु कराते रहते हैं, बाहर की दुनिया में ही या ब्राह्मणों की दुनिया में भी? ब्राह्मणों की दुनिया में भी अनेक देहदारी गुरु हैं जो क्या कहते रहते, चलो माउंट आबू हम तुम्हें स्वर्ग के दर्शन कराएं, शांति धाम सुखधाम दिखाएं। समझाए नहीं सकेंगे लेकिन क्या कहेंगे?
दर्शन कराएंगे,
चलो दर्शन कराए लें, अनुभव कराए लें शांति धाम सुखधाम का। लेकिन इसमें कहीं किसी को भटकाने की दरकार नहीं है। तुम हो सिकिल्ले बच्चे, तुमको एक ही बाप आकर के ये रूहानी यात्रा कराते हैं। क्या कहा? तुमको कहने वाला जिसको तुमको कह रहा है वो बच्चे कितने होंगे? थोड़े माने कितने है? वो थोड़े बच्चे कितने होंगे जिनको रूहानी बाप, एक ही रूहानी बाप रूहानी यात्रा कराता है? 4.5 लाख। और उनमें प्रवेश करने वाले 4.5 लाख, टोटल कितने हुए? 9 लाख आत्माओं को एक ही रूहानी बाप है जो यात्रा कराता है। तुम हो सिकिल दे बच्ची। क्या
सिकिल दे?
उनमें भी तुम हो, बहुत सिख से बहुत लंबे समय के बाद मिले हुए। यज्ञ जब शुरू हुआ था तब भी तुम मिले थे क्या? और अब भी मिल रहे हो, तो कितने हुए? सिख से मिले हुए सिकिल ने बच्चे कितने हुए?
बहुत थोड़े।
बहुत थोड़े कितने? 4.5 लाख या 9 लाख?
4.5 लाख।
4.5 लाख, 9 लाख नहीं है?
नहीं
है। क्यों है?
4.5 लाख जन्म लेंगे।
4.5 लाख जन्म लेंगे तब मिलेंगे। और तुम साकार में अभी मिलते हो। तुम हो शिकील दे बच्चे, तुमको तो रास्ता बताना है। तुम मंदिरों में जाकर समझाओ क्या
मंदिरों में।
तुम्हारा काम है गिरजाघर और मस्जिद में जाकर के समझाने का काम नहीं है। कहाँ जाकर समझाओ? मंदिरों में जाकर समझाओ। और मस्जिद में जाके समझाने लगे तो कोई मिस हो जिद करने वाली है तो वहाँ सुनेंगे नहीं। मंदिरों में जाकर तुम समझाओ ये देवी देवताएं कब राज्य करती थी, क्या समझाओ, क्या समझाओ। ये देवी देवताएं मंदिर में मूर्तियां रखी हुई हैं, ये कब राज्य करते थे, इनके सर के ऊपर छत्र लगा हुआ है, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो ये राज्य कब करते थे, एक्यूरेट जवाब दे पाएंगे? भक्त लोग इस बात का एक्यूरेट जवाब नहीं दे पाएंगे। कहेंगे त्रेता युग में राज्य करते थे राम सीता, लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे सतयुग में, इतना तक तो बताएंगे क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है त्रेता में राम का राज्य और सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य। लेकिन सतयुग त्रेता का बता तो पता नहीं, बता नहीं पाएंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि में तो बहुत नजदीक रखे हुए हैं मूर्तियों के रूप में। अमरनाथ के मंदिर कितना दूर रखा है, क्या कहा, ये अंतर क्यों है, हैं? कोई भी शहर में जाओ लक्ष्मी नारायण का मंदिर शहर के अंदर होगा और शिव के मंदिर, जितने भी पुराने मंदिर हैं शिव के, वो सब शमशान घाट में होंगे या शहर के बाहर होंगे, ऐसे क्यों रखते हैं, हैं? देवताओं के मंदिर शहर के अंदर क्यों और शिव का मंदिर शहर से बाहर क्यों होता है?
आत्मिक स्टेज के लिए।
आत्मिक स्टेज के लिए माने देवताओं की आत्मिक स्टेज नहीं होती है, देह अभिमानी होते हैं, हैं? देवताएं देह अभिमानी होते हैं क्या? देवताएं देह अभिमानी तो नहीं होते फिर? सही बात बताओ, हैं? हाँ, देवताओं की उतनी ऊंची स्टेज नहीं होती जितनी रुद्र बाप और रुद्र बाप के जो रुद्रगण हैं उनकी जो ऊंची स्टेज बनती है वो देवताओं की ऊंची स्टेज नहीं बनती। माना वो कब होते हैं और वो कब होते हैं? देवताएं तब होते हैं जब सतयुग की उतरती कला शुरू हो जाती है और जो रुद्रगण है वो संगम युग में होते हैं। जो एक्यूरेट सतयुग है उसमें रुद्रगण नहीं होते। तो बोला लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बहुत नजदीक रखे हैं, अमरनाथ का मंदिर कितना दूर रखा हुआ है, क्यों? ना उनकी स्टेज नहीं बताई, दूर रखा हुआ है। अमरनाथ का मंदिर दूर रखा हुआ है माना सन 37 से ये यज्ञ शुरू हुआ, उस समय से पुरुषार्थ शुरू हो रहा है। उस समय नहीं कहेंगे अमरनाथ की स्टेज किसी की बनी। अमरनाथ जैसी ऊंची स्टेज बनाने के लिए कितना लंबा टाइम चाहिए, है? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताओं में अमरनाथ के स्टेज वाला देवता कौन सा? शंकर। उसका कार्यकाल भी तो कोई होगा ना, कि तीनों देवताएं इकट्ठा कार्य करते हैं, है? अलग अलग टाइम है, अलग अलग उनका पुरुषार्थ है, तो अमरनाथ तक पहुंचने में ٹائم بہت لگتا ہے, دور رکھا ہوا ہے. شیو کے مندر نزدیک بھی رکھے اور دور بھی رکھے. پرانے جتنے مندر ہیں وہ سب دور ہیں. ڈھیر مندر بنائے ہیں, سمجھایا گیا ہے وہی پتت پاون باپ ہے نمبر ون. کیا وہی پتت پاون باپ ہے نمبر ون, باقی اوروں کے مندر بنانے سے کیا فائدہ؟ اوروں من رام سیتا کا مندر بنا دیا, لکشمی نارائن کا مندر بنا دیا, تو ان کا مندر بنانے سے فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہم اونچی سے اونچی اسٹیج والا ہے اس کو اگر یاد کریں گے تو پراپتی کیسی ہوگی؟ اونچے سے اونچی پراپتی ہوگی. اس لیے گیتا میں لکھا ہوا ہے بھوتوں کی پوجا کرنے والے بھوتی ہونے میں جاتے ہیں. کیا جتنے بھی تانترک ہیں وہ تو کون بنتے ہیں؟ بھوت پریت بنتے رہتے ہیں. اور جو دیوتاؤں کو یاد کرتے ہیں وہ دیوی ہونے میں جاتے ہیں, اور جو میرے کو یاد کرتے ہیں بھگوان کو وہ بہت اونچی پراپتی کرتے ہیں, بھگوت لوک کو پراپت ہوتے ہیں. تو کون سے لوک ہوئے؟ کتنے لوک ہوئے؟ تین لوک ہوئے. دواپر یوگ سے بھوت پریتوں کی دنیا شروع ہوتی ہے, اور جب سنگم یوگ سو سال کا پورا ہوگا تب کون سی دنیا شروع ہوتی ہے؟ دیوتاؤں کی سولہ کلا سمپورن دیوتاؤں کی دنیا شروع ہوتی ہے. اور اس سے پہلے 2036 سے پہلے, اور جب شنکر کی اسٹیج سمپن ہوتی ہے سنسار میں پرتکشتا ہو جاتی ہے نراکاری اسٹیج, تب سے لے کر کے 2036 تک وہ ہے امرناتھ کی اسٹیج. امرناتھ کے کیسے بچے؟ امر بچے. نشچے بدھی وجے جی بہت نزدیک رکھے ہیں. باقی اوروں کا مندر بنانے سے کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اوروں کا مندر بناتے رہیں گے, اوروں کو یاد کرتے رہیں گے تو اوستھا کیسی ہوتی رہے گی؟ اونچی نیچی ہوتی رہے گی. اور جو سدا ہی شیو ہے جس کی سدیو ہی اونچی اسٹیج ہوتی ہے اس کو یاد کریں گے تو ہماری بھی اسٹیج جلدی اونچی ہو جائے گی. تو اوروں کے مندر بنانے سے کیا فائدہ؟ وہ کوئی سکھ تو دیتے نہیں ہے, خود نیچے گرتے ہیں تو ہم کو بھی ہم کو نیچے گرائے دیتے ہیں. مانا دیوتائیں بھی سدا آتما ابھیمانی نہیں رہتے. اسروں کی تو بھوت پریتوں کی تو بات ہی چھوڑ دو, تو دیوتاؤں کو بھی فالو نہیں کرنا ہے. کس کو فالو کرنا ہے؟ ایک باپ کو. تم پجاری کوئی سکھ کے لیے نہیں بنتے ہو. کیا تم پجاری کس کے لیے بنتے ہو؟ سکھ شانتی کے لیے بنتے. تم پجاری بنتے ہو ایک شیو کی پراپتی کے لیے. تم کوئی سورگ کی پراپتی کے لیے سکھ کے لیے پجاری نہیں بنتے ہو. پوجا کرتے کرتے بہت تھک گئے ہو, اب پھر باپ آیا ہے پجاری سے پوج بنانے. خود تو پجاری نہیں بنتے ہیں. کون؟ باپ نہ پوج بنتا ہے اور نہ پجاری بنتا ہے. اگر باپ پوج بن جائے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟
پجاری بننا پڑے گا.
پجاری بننا پڑے گا
سدا شیو کو.
ہاں تو ٹھیک ہے, پجاری بن جائے گا, ہر جگہ नहीं हमको क्या नुकसान हो जाएगा अगर वो पूज्य और पुजारी दोनों बने
हमारे को कौन पूज्य बनाएगा
नहीं हाँ अगर वो भी पुजारी बनता रहे और वो भी पूज्य भी बने पुजारी भी बने तो फिर हमको ऊंचा उठाने वाला कोई नहीं होगा खुद तो पुजारी नहीं बनते हैं तुम जानते हो हम पूज्य थे फिर हम पुजारी बने हैं तो पुजारी का दर्जा कम हो जाता है क्या जो देवताएं पूज्य भी बनते हैं पुजारी भी बनते हैं उनका दर्जा कम हो जाता है और ऊंचते ऊंच दर्जा किसका रहता है जो सदैव एक रस अवस्था में लंबे समय तक टिकते हैं 1964 की मुरली का दूसरा पेज पूजी ऊंचे है क्या पूजी ऊंचे हैं लेकिन क्या नहीं है ऊंचते ऊंचे नहीं है बाप पूजी बनाते हैं क्या रामकृष्ण को जिनकी पूजा होती है उनको ऊंच कौन बनाते हैं बाप पूज्य बनाते हैं तुम पूज्य देवी देवताएं थे फिर पुजारी बन धक्के खाते आए हो अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है बहुत नजदीक रखे हैं क्या डायरेक्शन मिला
पूजा को छोड़ पूज्य बनना
अब पूजा को छोड़ दो किसकी पूजा छोड़ दे
देहधारियों
की जो पूज्य बनते हैं फिर पुजारी बनते हैं उनकी पूजा छोड़ दो अगर उनकी भी पूजा करते रहेंगे तो क्या करेंगे संगत के रंग से फिर नीचे गिरा देंगे तो अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनो क्या कहा जिनकी भक्ति छूटी नहीं है वो पूज्य नहीं बन सकते भक्ति छूटी नहीं है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा और जब शरीर ही छूट जाएगा तो जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा हाँ पूज्य बनने में माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं और यात्राओं पर जाने से अथवा मंदिरों में सत्संग में जाने से कोई रोकता नहीं है क्या कहा इस ईश्वरीय ज्ञान की पहचान क्या है ईश्वर से तो जो ज्ञान दिया जाता है और देवात्माएं जो ज्ञान देती हैं उसमें अंतर क्या बताया कि ईश्वर का जो सच्चा ज्ञान है वहां जाने से रोका जाता है विघ्न डाले जाते हैं लेकिन औरों के ज्ञान में जाने से रोका नहीं जाता यहाँ पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं बहुत करके गिरते हैं काम के खड्डे में बाप कहते हैं अभी मूतपलिती मत बनो क्या अभी उल्टा ज्ञान न उठाओगे जितना नीचे गिरेंगे उतना ऊंच चढ़ेंगे अब अगर नीचे गिरेंगे तो एक बार माफ दो बार माफ हमेशा माफ ही थोड़े ही करते रहेंगे फिर तो सजाएं शुरू हो जाएंगी और जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा बाप कहते हैं मूतपलीती मत बनो इस मूतपलीती बनने से संभलना है क्या कैसे संभलना है मूतपलीती बनने से कहेंगे हम का मूतपलीती बनते हम तो विकार में ही तो जाते हैं विकार में जाने में और मूतपलीती बनने में कोई अंतर है या नहीं है एक ही बात है मूतपलीती किसे कहा जाता है
दो भी
अरे जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनसे शक्ति छीण हो जाए तो क्या हो गया मूतपलीती हो गया अगर शक्ति क्षीण नहीं होती है तो उसे मूतपलिति नहीं कहेंगे। शक्ति क्षीण हो गई तो तन से क्षीण हो गई, माना मन जरूर पहले ही क्षीण हुआ पड़ा होगा। वाचा में भी कुछ न कुछ ऊपर नीचे होते रहते होंगे। मन से, तन से और संकल्प मात्र से पतन का अनुभव न करे, नीचे गिरने का अनुभव न करे, उमंग उत्साह बिल्कुल कम न होने पाए, तो मूतपलिति मत बनो। इनसे संभलना है, सबसे गंदा गिरना है काम विकार का, काम चिता में जलना, विषय सागर में गोते खाना। चलो कोई ऐसा है जो तन से पतित नहीं बनता है, लेकिन मन से संकल्प वही चलाता रहता है पतित होने के, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे काम चिता में क्या हो रहा है, जल रहा है। विषय सागर में गोता खाना ये सबसे गंदा काम है, चाहे मन से गोता खाना और चाहे तन से गोता खाना। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, गटर में गोते खाने का ख्याल कब नहीं करना है, जब जब ख्याल आता है। तो संकल्प है बीज, ख्याल भी आया माने बीज बो दिया, और बीज बोया है तो उसका फल भी आगे पीछे निकलता है। कभी ख्याल नहीं आना चाहिए, मूत है ना, इससे पतित बन पड़ते हैं। ऐसे मत समझो यहाँ जो आते हैं तो उनों की बिख से बुद्धि निकल जाती है, ऐसे भी बेवकूफ है यहाँ। वो समझते हैं बड़ा भाई ज्ञान में बहुत होशियार है, इसकी बहुत देखभाल करनी चाहिए। कोई आया, अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाया, अच्छी अच्छी बातें सुनाई, बस आराम से घर में रख लिया, परिवार में अंदर गुजर लिया। फिर जब उसने वो अपने उल्टे सीधे कर्म बंदर पढ़ने के करना शुरू किए, तो हम क्या जाने, हम तो समझते थे ज्ञान में चलता है, इसलिए हमने रख लिया। तो आगाह कर दिया पहले से ही, क्या आगाह कर दिया है? ऐसे मत समझो यहाँ जो आते हैं तो उनों की बिख से बुद्धि निकल जाती है। कोई क्लास में कितना ही रेगुलर हो लेकिन ये विश्वास कभी नहीं करना है कि उसकी बिख से बुद्धि निकल गई होगी। एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदे बनने के लिए। वो अंदर की बात है, कोई बाहर से तो देखने में नहीं आती है। उस समय बाप कहते हैं कब गंदा नहीं बनना, कोई कप नहीं करना है, क्या गंदा बनने के लिए कोई का पीछा नहीं करना है। एक दो में प्रेम किया खलास, क्या एक दो से लगाव लगाया और फिर गिरने से कोई बचाए नहीं सकता। कब गटर में गिरने का पुरुषार्थ मत करो। बाप इस बात से बचाते रहते हैं, बातें तो बहुत है, खुद भी लिखते हैं बाबा माया ने हमको गटर में गिराई दिया। बाप कहेंगे मुआ काला मुंह कर लिया, गटर में गिरा माना मुआ, मुआ माना मर गया, गटर में गिर गया माने एक बार तो अनिश्चय आ गया ना, अनिश्चय आया तो नीचे गिर गया। बाप कहेंगे मुआ काला मुंह कर दिया, तो गिराना, गिरना और संभलना। गिरने की कितनी चटाबटी है, माया ने ऐसी चमाटमारी जो एकदम खत्म हो गया, मर गया, ये ड्रामा कहेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ किसी के जीवन में तो उसको क्या कहेंगे, इसका ऐसा ही ड्रामा था। कुल को कलंक लगाते आते हैं, کیا وہ بھی کون سے کل کو؟ جو ایشوریہ کل ہے اس کو کلنک لگانے والے بن گئے. کتنے جا کر کے گندے بنے. گندا مایا بناتی ہے. آدھا کلپ دکھ دینے والی مایا ہے, باپ نہیں ہے. کیا کہا؟ آدھا کلپ دکھ دینے والی مایا ہے, باپ نہیں. مفت میں دوست دھر دیتے ہیں. کیا دھر دیتے ہیں دوست؟ ایشوری ایشوری سکھ دیتا ہے, ایشوری دکھ دیتا ہے. ایشور کو باپ نہیں سمجھتے. پرم پتا کب کس کو دکھ کیسے دیں گے؟ کیا یہ اندر سے سنکلپ چلتا ہے؟ اس نے ہم کو نیچے گرایا. کس نے؟ آخر کسی کے سنکلپ چلتا ہوگا تبھی تو بولا. جن کے اندر بھی یہ سنکلپ چلتا ہے کیا یہ باپ ہی نیچے گراتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ نشچے بدھی آتما نہیں ہے. پرم پتا کب کس کو دکھ کیسے دیں گے؟ پرم پتا دکھ دے وے تو باقی منشی تو ایک دو میں بڑا ہی دکھ دینے لگ پڑیں گے. جو اونچتے اونچے ہیں وہ اونچتے اونچے کام کرے گا تب تو سنسار میں اونچی تو اونچی گایا جائے گا. نیچ کام کرنے والے, دکھ دینے والے نیچ کہے جائیں گے. باپ سمجھاتے ہیں تم ہی اپنے لیے ایسے کرم بناتے ہو. کیا
اپنے لیے کرم بناتے
تم بناتے ہو اپنے لیے ایسے کرم. میں کسی کو نیچ گرانے کا نمت نہیں بنتا ہوں. سنگ دوست میں بھی الٹے کرم کر لیتے ہو, باپ کو بھول جاتے ہو. کیا کہا؟ اگر تم الٹا کرم کرتے ہو تو جب باپ کو بھولتے ہو تب الٹا کرم کرتے ہو. باپ کی یاد رہے تو الٹا کرم کب ہو نہیں سکتا. سادھارن ہے نا تو بچے بھول جاتے ہیں. کون ہے سادھارن؟
باپ.
باپ جو سادھارن تن میں آیا ہے تو جیسے دنیا والے لوگ کرم کرتے ہیں ایسا کرم کرنے والا باپ کو بھی سمجھ لیتے ہیں. سادھارن باپ کو سادھارن روپ کو دیکھ کر کے اسے سادھارن کرم کرنے والا سمجھنے کے کارن ایسی بھول ہو جاتی ہے. باپ تو سکھا ہی دیں گے پرنتو اس کو بھول جاتے ہیں. باپ سمجھتے ہیں یوگ پورا نہیں ہے اس لیے باپ کے اوپر دوش دھرتے ہیں. ایسے مت سمجھو بھاشن کرنے والے ہیں, پنڈت کی کتھا ہے. کیا کتھا ہے؟ پنڈت کی کیا کتھا ہے؟ اوروں کو کہا رام رام کہنے سے ندی پار ہو جائیں گے اور خود پار ہو نہ سکا, بیچ میں ہی ڈوب گیا. تو کون ہوا پنڈت؟ راجا رام چندر جی
بن گیا. رام چندر بن گیا.
رام چندر بن گیا. بن جائے گا نہیں
گیا
بن گیا. اب نہیں بنے گا.
اب تو نہیں.
اب نہیں.
اب نارائن بنے گا.
اب نارائن بنے گا. اچھا پکا رکھنا. بولے ووٹ لے آؤ تو چلے. کہا کہ رام نام کرنے سے کہنے سے ندی پار ہو جائیں گے, خود پار ہو نہ سکا. کیا کہا؟ ووٹ لے آؤ تو ہم چلیں. جو خود کہتا تھا وہ کر نہ سکا. صرف کتھن ہی نہیں کیا کرنی میں بھی ہونا چاہیے. کتھنی کرنی رہنی رہن سہن سب میں پاس ہو. کیا ایسے نہیں گیان کا کوئی بہت اچھا اچھا سناتا رہے اور پریکٹیکل میں فیل ہوتا رہے تو اس کو کوئی مانے گا نہیں. اس لیے باپ کو مت بھولو. بابا ابھول بناتے ہیں, مایا اچھے اچھے مہارتیوں کو بھی ناک سے پکڑ لیتی ہے. کیا ہاتھ سے کیوں نہیں پکڑتی ہیں؟ مایا ہاتھ سے کیوں نہیں پکڑتی, ناک سے کیوں پکڑتی ہے؟ جو خود بھکاری ہوتا ہے وہ دوسروں کو پہلے اس نظر سے زیادہ دیکھتا ہے, جو دوسروں کو بھی اس نظر سے دیکھتا ہے سب کو اسی نظر سے دیکھتا ہے, بھگوان کو بھی اسی نظر سے دیکھنے لگ پڑتا ہے. جو ایشوریہ پارٹ ہے اس کو بھی کانی آپ سے دیکھنے لگ پڑتا ہے. تو باپ کہتے ہیں کہ مایا اس کو ناک سے پکڑ کر کے ان کو خوب بھٹکاؤ. مہارتھیوں کو ناک سے پکڑتی ہے. کیوں سادھارن پرسارتھیوں کو ناک سے نہیں پکڑتے ہیں؟ کسی کے اوپر زیادہ غصہ ہوتا ہے نا, جیسے بندر ہے جب سانپ کو پکڑ لیتا ہے مڑیا تو کیا کرتا ہے, اس کی ناک زمین سے رگڑے گا. تو کسی کے اوپر زیادہ غصہ آتا ہے تو اسے ناک سے رگڑایا جاتا ہے. تو مہارتھیوں کو ناک سے پکڑ لیتی ہے اور ان کو پتا ہی نہیں پڑتا ہے کن کو, مہارتھیوں کو, کہ ہم کوئی بھول کرتے ہیں. باپ کہتے ہیں کوئی بھی بھول کرو تو کیا کرو ہے, ہاں پوتا میل جھٹ لکھو اور باپ سے آ کر معافی مانگو, آئی ایم سوری. سمجھو شیو بابا کہتے ہیں یہ تمہاری بھول ہے. اچھا بابا ہم سویکار کرتے ہیں, ہم کو کھما کرو. یہ بھی اچھے اچھے بچوں میں فضیلت نہیں رہتی ہے کیا, کہ کوئی بھول ہو جائے تو بابا سے آ کر معافی لے لیں. ہم نے اتنی کڑی بھول کی ہے معافی تو مانگے, یہ بھی فضیلت نہیں رہتی. اچھے اچھے بچوں میں وہ بھی فضیلت ہے ہی نہیں, اپنے کو بہت میاں مٹھو سمجھتے ہیں. پاپ کرتے رہتے ہیں تو کھما تو لینی چاہیے, نہیں تو ان کی بدھی ہوتی رہے گی. باپ کے ساتھ بدھیوں کو بڑا اچھا چاہیے, بھل بھاشن تو بہت اچھا اچھا کرتے ہیں پرنتو سمپورن تو کوئی نہیں بنا. کیا کوئی اچھا اچھا بھاشن کرے تو کبھی وشواس نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ سمپن بن گیا ہوگا. کیا کیا دیکھنا ہے, کیا پرکھنا ہے, کتھنی کے ساتھ کرنے اور رہن سہن بھی دیکھنا ہے. باپ کے ساتھ بدھیوں کو بڑا اچھا چاہیے, بھل بھاشن بہت اچھا کرتے ہیں پرنتو سمپور کوئی نہیں بنا ہے, انت تک گرتے اور سنبھالتے رہیں گے. کیا انت انت سب کا ایک ساتھ ہوگا یا الگ الگ ہوگا؟ الگ الگ ہوگا. فائنل پیپر سب کا ایک ساتھ نہیں ہوگا؟ فائنل ہوگا نہیں ہوگا,
نمبر وار ہوگا,
ایک کے بعد ایک ہوگا,
نمبر وار نمبر
وار. ایک سیکنڈ کا پیپر نہیں ہوگا, ایک سیکنڈ کا پیپر ہوگا, ایک ہی کوشچن کا پیپر ہوگا. تو بولا انت تک گرتے اور سنبھلتے رہیں گے. بابا سے بھول ہوتی ہے, کہتے ہیں بابا ہم سے بھول ہو گئی آپ ہم کو کھما کرو. کون سے بابا سے بھول ہوتی ہے اور کس سے کھما مانگتے ہیں؟ جو بابا سے بھول ہوتی ہے, ہاں بابا سے بھول ہوتی ہے, مانا برہما بابا سے بھول ہوتی ہے, کہتے ہیں بابا ہم سے بھول ہو گئی. کس سے کہتے ہیں؟ شیو بابا سے کہتے ہیں بابا ہم سے بھول ہو گئی آپ کھما کرنا. کسے کہتے ہیں؟ شیو بابا. شیو بابا ان کے سامنے ہوتا ہے کیا یا ہوتا تھا یا ہوتا ہے یا ہوگا؟ ہوتا ہے, ہوگا. کیسے؟ زور سے بولو.
آنے والے کا
کوئی کہتا ہے سنکلپوں سے ہوگا,
अभी तो वर्तमान संकल्पों की खेल है,
संकल्पों का खेल है
जगदम्बा।
प्रैक्टिकल में बाप नहीं, ब्रह्मा बाबा नहीं होगा जो साकार बाबा से माफी मांगे।
जगदम्बा
वो तो गलती करेगा ना, संपूर्ण ब्रह्मा है
वो, संपूर्ण ब्रह्मा है वो, गलती करेगा नहीं। संपूर्ण ब्रह्मा एक होता है या चार चार होते हैं?
हैं?
हाँ, तो जो दादा लेखराज ब्रह्मा है, जिस समय मुरली चल रही थी उसकी बात हो रही है ना, वो दादा लेखराज ब्रह्मा कोई भूल करते हैं तो उनका मिसाल दिया कि बाबा से कहते हैं बाबा हमको क्षमा करो, वो तो उस समय की बात हुई, यज्ञ के आज की हुई हो, लेकिन अब कैसे ये बात लागू होगी? हैं? हाँ, ब्रह्मा बाबा की सोल कोई में तो प्रवेश करके बड़ी माँ का पार्ट बजाती होगी ना, तो जिसमें भी प्रवेश करके बड़ी माँ का पार्ट बजा करके संसार में जगदम्बा के रूप में पूज्य होती है, तो पूज्य पहले बनेगी या पहले क्षमा मांगती है? पहले क्षमा मांगती कि हमसे ये भूल हो गई, तो बाबा से भूल होती है तो कहते हैं बाबा हमसे भूल हो गई, आप हमको क्षमा करना, रहम दिल क्षमा करो। कौन रहम दिल? बाबा ने भूल की, बाबा से क्षमा मांगी, तो भूल वो रहम दिल कौन हुआ? है जो शिव बाबा है वो रहम दिल है, क्षमा का सागर है, रहम दिल क्षमा करो। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते, ये भी शूटिंग कहाँ की है? है? संगम की। कैसे है? संगम में भी बार बार गलतियां करते रहते हैं भगत लोग। तुम सब भक्तियां हो, तुम सब सीताएं हो, तो सीताओं और भक्तियों में कोई अव्वल नंबर भी होगा कि नहीं होगा? है? बार बार भूले करेगा, बार बार क्षमा मांगे। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते, बाप को कहते हैं क्षमा करो, धर्मराज द्वारा फिर डंडा नहीं खिलाना हमको। इसलिए खबरदारी बहुत चाहिए, ऐसे मत समझो हम सोलह कला संपूर्ण बन गए हैं। क्या ऐसे नहीं समझो, कोई कोई ऐसे भी होते हैं, क्या अहंकार आ जाता है कि हम तो संपूर्ण देवता बन गए? नहीं, बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा अशुद्ध स्वप्न आते हैं। क्या जब तक अशुद्ध स्वप्न आते हैं तब तक क्या साबित होता है कि आत्मा संपन्न नहीं बनी है, अशुद्ध संकल्प में रमण करती है। जैसे स्वप्न होंगे वैसे ही संकल्प जरूर आवेंगे।